नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोर शोर से जारी। राजनीतिक दल उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने में व्यस्त। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, सरकार सीमा पार की किसी भी आतंकी गतिविधि से सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध। वैसाखी, विशु और बोहाग बिहू सहित पारंपरिक फसल पर्व आज से देशभर में मनाए जा रहे हैं। ईरान के संभावित हमले से इसराइल की रक्षा के लिए अमरीका ने पश्चिम एशिया में युद्धपोत भेजे। और लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। पहले चरण के मतदान में अब केवल 6 दिन शेष हैं। इसके साथ ही देशभर में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां कर रहे हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी दल संविधान के नाम पर झूठ का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान को किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जा सकता। राजस्थान के बाड़मेर में एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के साथ भेदभाव किया और आज संविधान के नाम पर झूठ बोल रही है।
जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आम्बेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है।
इसके बाद श्री मोदी ने राजस्थान के दौसा में रोड शो किया। उनके साथ राज्य सरकार की कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और दौसा से पार्टी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में 3 स्थानों पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया। चमोली के गौचर में देश की सुरक्षा पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन यदि भारत के मामलों में कोई भी दखल देता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि एनडीए सरकार केवल कुछ अमीर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आयकर विभाग के जरिए विपक्षी दलों को धमकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। श्री राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच है। उत्तराखंड में आज भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के बड़े नेताओं की जनसभाएं होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रामनगर और रुड़की से चुनावी सभाएं संबोधित करेंगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती हरिद्वार में प्रचार करेंगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन के पहले दिन कल 7 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। इस चरण में ग्वालियर, गुना, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, मुरैना, सागर और भिंड में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए देश के प्रमुख संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज केरल कोयम्बतूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी दी जा रही है। इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र हैं।
2021 के विधानसभा चुनावों में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अन्ना द्रमुक ने 5 और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती थी। भाजपा उम्मीदवार वनाती ने यह सीट अभिनेता कमल हासन को हराकर जीती थी। कोयम्बटूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। यहां वाम दलों ने 6 बार, कांग्रेस ने 3 बार और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने 2 बार जीत हासिल की है। झारखंड और तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 1998 और 1999 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। इस बार इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। अन्ना द्रमुक के सिंगाई पी रामचंद्रन, पूर्व अन्ना द्रमुक नेता, पूर्व मेयर पी गणपति राजकुमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई इस सीट के प्रमुख दावेदार हैं। कोयम्बटूर में कुल 30,81,594 मतदाता है। जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारियों की समीक्षा की है। आयोग ने कल पूरे देश में 350 से अधिक चुनाव पर्यवेक्षकों से चर्चा की। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। इस चरण में निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने 127 सामान्य, 67 पुलिस और 167 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान कर रहा है। इस पहल के अंतर्गत 85 वर्ष से अधिक आयु वाले और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता घर से वोट देने का विकल्प चुन सकते हैं। इन मतदाताओं ने पहले और दूसरे चरण में वोट डालना शुरू कर दिया है। इस सुविधा के लिए देशभर में 81 लाख वरिष्ठ नागरिकों और 90 लाख दिव्यांग मतदाताओं ने अपना पंजीकरण कराया है। छत्तीसगढ़ में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कई अनूठे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित कर 100% मतदान सुनिश्चित करना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में कल एक ही दिन में 7 लाख से अधिक लोगों ने मतदान करने की शपथ लेकर एक नया इतिहास रचा है। जिले में एक ही दिन में 29 विभाग और संस्थानों के लोगों ने वोट डालने की शपथ ली। राजधानी में कलेक्टोरेट के पास मल्टी लेवल पार्किंग की छत पर बारिश के बीच अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों ने मतदान करने की शपथ ली। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ऐसे शपथ कार्यक्रम एक साथ तहसील कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, शासकीय विभागों, रेलवे, बैंक, शैक्षणिक संस्थानों और ग्राम पंचायतों में आयोजित किए गए। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि सरकार सीमा पार की किसी भी आतंकी गतिविधि से सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। पुणे में कल डॉक्टर जयशंकर ने मुंबई में 26 नवंबर के आतंकी हमले के मामले में कांग्रेस सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि आतंकवाद से किसी भी हद तक जाकर निपटना होता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत को शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने ईरान और इसराइल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों से अगली सूचना तक दोनों देशों की यात्रा नहीं करने का परामर्श जारी किया है। दोनों देशों में रहने वाले भारतीयों को भारतीय दूतावासों से संपर्क करने और अपना पंजीकरण कराने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने कहा है कि म्यांमा, विशेषकर रखाइन प्रांत में भी सुरक्षा स्थिति गंभीर है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि म्यांमा की यात्रा करने वाले भारतीयों को उचित सुरक्षा निर्देशों का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले से गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु में 1 मार्च को यह विस्फोट हुआ था। कोलकाता में इन आरोपियों को विशेष अदालत ने 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु भेजा है। इन अभियुक्तों पर 10 लाख रूपये का इनाम था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वैसाखी, विशु, बिशुभ, बोहाग बिहु, पोइला बोईशाख, वैशाखड़ी और पुत्तांडू पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये पर्व आज और कल मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने देशभर के किसानों की कड़ी मेहनत के लिए आभार व्यक्त किया और उनके जीवन में समृद्धि तथा शांति की कामना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार विविधता में एकता की भावना को सुदृढ़ करते हैं। पंजाब में फसल कटाई का त्यौहार बैसाखी उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वर्ष 1699 में आज ही श्री आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, इसलिए श्री आनंदपुर साहिब स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहिब में संगतों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। एक रिपोर्ट।
1699 में आज ही के दिन सिखों के दसवें व अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहिब में 5 लोगों को अमृत ग्रहण करवाकर खालसा पंथ की स्थापना की और उन्हें नाम दिया पंज प्यारे। इस अवसर पर गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहिब में देश विदेश से संगतों का तांता लगा हुआ है। आज ही के दिन सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेज जनरल डायर ने 73 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर असंख्य देशभक्तों को शहीद कर दिया था। किसानों के लिए भी ये दिन बेहद खुशियां लाता है क्योंकि वे इसी दिन से अपनी गेहूं की फसल की कटाई की औपचारिक शुरुआत करते हैं। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
मेघालय में 2 दिन का स्ट्रॉबेरी महोत्सव कल से शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और राज्य में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देना है।
कल से शुरू हुए 2 दिवसीय उत्सव में आगंतुकों और किसानों को स्ट्रॉबेरी चुनने, स्ट्रॉबेरी के खेतों के आसपास साइकिल ट्रैकिंग करने, लोक गीत संगीत के साथ स्ट्रॉबेरी के पेय पदार्थों को बनाने की तकनीक एवं मार्केटिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है। आयुक्त डॉक्टर विजय कुमार ने रिभोई जिले के सोहलिया में आयोजित स्ट्रॉबेरी महोत्सव के एक कार्यक्रम में कहा कि मेघालय में स्ट्रॉबेरी बहुतायत में पनपती है। उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती के साथ पर्यटन को एकीकृत करने पर जोर देते हुए कहा कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्देश्य आजीविका के नए अवसर पैदा करना और एग्रो टूरिज्म के उद्यमों को बढ़ावा देना है। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी, शिलांग।
अमरीका ने कहा है कि वो इसराइल पर ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए पश्चिमी एशिया में युद्धपोत भेज रहा है। अमरीकी बलों की सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्र में शक्ति संतुलन कायम करने के लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अमरीका ने विमान वाहन आइलॉन हावर को भेजा है। इस विमान वाहन में मिसाइलें और ड्रोन की सुविधा भी है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास में एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या के बाद ईरान की ओर से बदले की कार्रवाई की आशंका है। मौसम विभाग ने पश्चिमोत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम की स्थिति दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अगले 3 दिन और तेलंगाना, केरल, कर्नाटक तथा पुदुचेरी में 6 से 7 दिन तक जारी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। 168 रन के लक्ष्य को दिल्ली कैपिटल्स ने 11 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 3 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच रहे। प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद निखिल। देश में चुनावी सरगर्मियों से जुड़े समाचार अखबारों में प्रमुखता से छाए हुए हैं। अमर उजाला और पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को पहली खबर बनाया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द, राज्य का दर्जा मिलेगा। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है, मोदी बोले, राज्य में पहली बार आतंकवाद और अलगाववाद चुनावी मुद्दे नहीं। हरिभूमि ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को दिया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। ईडी के सिर्फ 3% मामले ही राजनेताओं के खिलाफ। देशबंधु ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सचित्र प्रकाशित किया है। लोकसभा चुनाव लोकतंत्र को बचाने और संविधान की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। पत्र ने बॉक्स में ये भी लिखा है, बसपा ने 9 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की। दैनिक ट्रिब्यून ने विदेश मंत्रालय के इस परामर्श को प्रमुखता दी है, अगली सूचना तक ईरान और इसराइल की यात्रा न करें। इसी खबर पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, युद्ध का खतरा देख भारत ने अपनों को किया अलर्ट। दैनिक जागरण के अनुसार, म्यांमार में बिगड़ते जा रहे हालात, विद्रोहियों ने सीमावर्ती शहर पर किया कब्जा। जनसत्ता के पहले पन्ने की खबर है, खुदरा महंगाई दर 5 महीनों के निचले स्तर पर, दाम घटने से मामूली राहत। वहीं दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत का औद्योगिक उत्पादन 5.7% बढ़ा, खनन क्षेत्र का शानदार प्रदर्शन। वीर अर्जुन के वाणिज्य पन्ने की खबर है, भारतीय रियल एस्टेट का आकार पिछले 9 साल में 73% बढ़कर $482 अरब पहुंचा। वहीं हरिभूमि के अनुसार, वायुसेना को मिलेंगे 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया 65,000 करोड़ रूपये से अधिक का टेंडर। पंजाब केसरी लिखता है, प्रतिबंधित आतंकी संगठन का खालिस्तानी सदस्य प्रभप्रीत सिंह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। वहीं राजस्थान पत्रिका ने खेल पन्ने की सुर्खी है, मैरीकॉम ने पैरिस ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डी मिशन पद से इस्तीफा दिया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोर शोर से जारी। राजनीतिक दल उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने में व्यस्त। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, सरकार सीमा पार की किसी भी आतंकी गतिविधि से सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध। वैसाखी, विशु और बोहाग बिहू सहित पारंपरिक फसल पर्व आज से देशभर में मनाए जा रहे हैं। ईरान के संभावित हमले से इसराइल की रक्षा के लिए अमरीका ने पश्चिम एशिया में युद्धपोत भेजे और लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।